नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, दुर्लभ खनिजों और नशीली दवाओं, आतंकवाद के गठजोड़ से निपटने पर केंद्रित 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रवासियों को कृषि और बागवानी आधारित आजीविका से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले दिन विश्व के विकास के उद्देश्य से 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। इनमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल शामिल हैं। सम्मेलन के 2 सत्रों में श्री मोदी ने कहा कि ये पहल सभी के लिए विकास, प्रगति और कल्याण के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से चहुंमुखी विकास को हासिल करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री धामी ने सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी पंतनगर के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में औद्योगिक माहौल सुधारने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अनुकूल नीतियां लागू कर रही हैं। उन्होंने बताया कि किच्छा खुरपिया पार्क, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा और पंतनगर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खुरपिया क्षेत्र में बनने वाली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से बड़े निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित किच्छा में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अंतिम चरण में है। लगभग 20.64 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर करीब 588.99 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह सड़क उधम सिंह नगर से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले होती हुई बाईपास रोड से सिडकुल स्थित रामपुर नैनीताल हाईवे से जुड़ती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की देखरेख में इस सड़क का निर्माण तेजी से हो रहा है। परियोजना लगभग 80% पूर्ण हो चुकी है और 11 जनवरी 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना प्रबंधक तकनीकी मीनू ने बताया कि शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण की थी, जिसे पूरा कर किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से न केवल क्षेत्र का विकास तेज होगा, बल्कि रुद्रपुर शहर में ट्रैफिक का दबाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
इसमें जो मेजर दिक्कतें थी वो हमारे लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड थी। जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है उसमें जितने भी हमारे भूमिधर हैं उनको मुआवजा सक्षम भूमि प्राधिकारी के माध्यम से करा दिया गया है और आज की डेट में भूमि की कोई समस्या नहीं है। इसमें जिला प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला है और कार्य की प्रगति विद इन टाइम लिमिट चल रही है और हमारा प्रयास है कि जनवरी 2026 तक इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। इसको बनने के बाद रुद्रपुर शहर में जो जाम की समस्या रहती थी उसमें काफी लोगों को निजात मिलेगी। इसकी कुल लंबाई है 20.64 किलोमीटर।
अल्मोड़ा जिले की भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर राती घाट के पास एक वाहन दुर्घटना में 3 शिक्षकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल का उपचार चल रहा है। कल देर शाम हवालबाग क्षेत्र से हल्द्वानी विवाह समारोह में शामिल होने निकले शिक्षक नेताओं की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई पार करते हुए शिप्रा नदी में गिर गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा। ये प्रदेश में एकीकृत व्यवस्था होगी। इसके जरिए केंद्र की एजेंसी के साथ समन्वय किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।
राज्य में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम लोग विकसित करने जा रहे हैं, जो एक एकीकृत व्यवस्था होगी पूरे राज्य में और राज्य से केंद्र की एजेंसीज के समन्वय के लिए, और उसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और सभी जो फाइनेंशियल चेन में इन्वॉल्व रहते हैं उनके प्रतिनिधि भी होंगे, जिससे कि ऐसे किसी भी प्रकरण की सूचना मिलते ही एक त्वरित जो उसकी प्रतिक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई हो, जिससे कि वो जो मनी ट्रेल है वो आइडेंटिफाई होके ब्लॉक हो जाए। तो इसमें कई इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं। हमारे पुलिस फोर्स से बहुत बड़ी संख्या में साइबर कमांडोज सेलेक्ट हुए हैं जो प्रशिक्षण अपना पूरा करके विभिन्न चरणों में वापस आ रहे हैं, और हम लोग अपने पूरे साइबर सेल के और जो साइबर क्राइम के विरुद्ध जो हमारा नेटवर्क है उसको हम सुदृढ़ कर रहे हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे प्रवासियों को कृषि और बागवानी आधारित आजीविका से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। देहरादून में आयोजित कृषि विभाग की बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दिशा में शीघ्र एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाया जा सके। उन्होंने उधम सिंह नगर में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए और कहा कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों की EKYC का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को अंतिम तिथि निर्धारित की है। हालांकि अंगूठा और रेटिना स्कैन में आ रही दिक्कतों के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बड़ी संख्या में EKYC पूरी नहीं हो पाई है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी उपभोक्ता का राशन वितरण नहीं रोका जाएगा।
जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनकी EKYC इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो, और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंब प्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी, थंब प्रिंट भी था, और जिनका थंब प्रिंट नहीं आता है उनका आंखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंब प्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है, कि EKYC नहीं हो पा रही थी और राशन से वंचित होने की संभावनाएं बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है, क्योंकि इस प्रकार के कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं जिसको लेकर शिथिलता बरती गई है। विभाग की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया है कि जहां पर हमारे ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य की दृष्टि से या असाध्य रोग से जिनका थंब प्रिंट नहीं आ रहा है इत्यादि जिनकी समस्याएं हैं, उनको जो है राशन से वंचित न किया जाए और 80% लोगों को जो इनका ये आ रहा है उससे कवर किया जाए, ये निर्देश दिया गया है।
56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के चौथे दिन आज भी गोवा में सिनेमा प्रतिभा और वैश्विक भागीदारी का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आज इफ्फी में विशेष आकर्षण वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर की मास्टर क्लास है, जहां उनकी कला, अनुभव और सिनेमा के प्रति समर्पण से प्रतिभागियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल सिनेमा और इंडियन पैनोरमा के तहत कई बेहतरीन फिल्मों की स्क्रीनिंग दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव दे रही है। देश विदेश से आए फिल्मकार अपनी रचनाओं पर खुलकर विचार विमर्श करेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देकर इस संवाद को और भी समृद्ध बनाएंगे। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर पर एक नजर। भारतीय शटलर और अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सेन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह इस साल का उनका पहला खिताब है। लक्ष्य ने आज फाइनल मुकाबले में 26वीं रैंकिंग के जापानी खिलाड़ी योशी तनाका को 21-15, 21-11 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, दुर्लभ खनिजों और नशीली दवाओं, आतंकवाद के गठजोड़ से निपटने पर केंद्रित 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रवासियों को कृषि और बागवानी आधारित आजीविका से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।